उत्तम चंद जी प्रवचन उनकी पत्ना को की पत्ना कुमर सरदार उत्तम चंद जी प्रवचन समय सा
अशुद्ध होने का उसका प्रश्न ही नहीं है, वो तो अनादि से जब से सत्ता है तब से वो शुद्ध ही है। इसलिए शुद्ध है कि अगर प्रमत्त रूप परिणाम था तो अशुद्ध होता, और प्रमत्त से अप्रमत्त रूप परिणाम था तो शुद्ध होता। लेकिन ये शुद्धता अशुद्धता जो पर्याय में लागू होती है वो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव में ये शुद्धता लागू नहीं होती, वो तो नित्य शुद्ध है और सदा से ही शुद्ध है, उसे शुद्ध होना नहीं है। जिसे शुद्ध होना हो उस त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लेवे और शुद्ध बने, इसलिए उसमें कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो यहाँ टीकाकार अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं कि वह शुद्धात्मा स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है। पहला बिंदु आया अपने आचार्य अमृतचंद स्वामी का, तो वो शुद्धात्मा कैसा है? अनादि अनंत है। हेतु क्या है अनादि अनंत होने का? ये स्वयं सिद्ध है। इसे ये सिद्ध हो गया कि जगत में जो जो चीजें स्वयं सिद्ध है वे सब अनादि अनंत है। छयों द्रव्य स्वयं सिद्ध है इसलिए वे कैसे है? वे अनादि अनंत है। आत्मा भी स्वयं सिद्ध है इसलिए आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है, क्योंकि जो स्वयं सिद्ध है वो अनादि अनंत होता है। तो शुद्धात्मा स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत में तो छयों द्रव्य आ जाएंगे, समझाया कि नहीं? लेकिन वे अंगला विशेषण लगाएंगे तो वे सब न्यारे हो जाएंगे। अगला विशेषण ये है कि वो नित्य स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप, ज्योति में मात्रा छूट गई है देख लेना, ज्योति रूप एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक माने ज्ञायक भाव है, माने चेतन भाव है, वो कोई अचेतन भाव नहीं है। और ये प्रमत्त भाव है और अप्रमत्त भाव है, ये दोनों चेतन भाव नहीं है। अप्रमत्त भी चेतन नहीं है, आपको बता दिया कैसे नहीं है वो आपके सामने बताते हैं कि शुभ राग और अशुभ राग इसको प्रमत्त कहा और अप्रमत्त किसको कहा? कि बीत राग को अप्रमत्त कहा। तो बीत राग का चारित्र गुण की निर्विकारी अर्थ पर्याय और शुभाशुभ भाव चारित्र गुण की विकारी अर्थ पर्याय, समझ में आएगा नहीं? चारित्र गुण की विकारी अर्थ पर्याय ज्ञायक नहीं, चारित्र गुण की निर्विकारी पर्याय ज्ञायक नहीं, और स्वपर को प्रकाशन की सामर्थ्य चारित्र की पर्याय में नहीं होती। क्या ही ख्याल में? चाहे वो स्वभाव पर्याय हो और चाहे वो विभाव पर्याय हो, स्वपर प्रकाशन की सामर्थ्य तो ज्ञायक की जो पर्याय है ज्ञान पर्याय उसमें स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य होती, इसलिए वो आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, बीत रागी भी नहीं है और रागी भी नहीं है, वो तो ज्ञायक है। क्या कह रहे हैं? तो सुनना भाई जरा, है बात बता रहे हेतु से बता रहे और आपके ख्याल में आए ऐसी बात बताना चाह रहे। तो यहाँ लिखा नित्य स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप एक ज्ञायक भाव है। आगे तीसरा बिंदु लिया, वह ज्ञायक भाव संसार दशा में, जब बात है निरूपण शुद्धात्मा का चल रहा है और नए अभी संसार दशा वाला अशुद्ध नय की चर्चा कर रहे हैं, ये अशुद्ध नय की चर्चा करने में अशुद्धि नहीं आने वाली, ये तुम समझ लेना जरा। अशुद्ध नय की चर्चा से अशुद्धि नहीं आती है और शुद्ध नय की चर्चा से शुद्धि नहीं आती है। क्या कह रहा हूँ? इसलिए चर्चा चाहे अशुद्ध नय की हो चाहे शुद्ध नय की हो, शुद्ध नय का विषय भूत आत्मा दृष्टि का विषय बने और उसकी एकाग्रता हो तो शुद्धता प्रकट होती है, और अशुद्ध नय के आश्रय को जो रागादि भाव है उनका आश्रय लेवे और उनमें प्रवर्तन करे तो अशुद्धता प्रकट होती। नय की चर्चा से और नय के द्वारा जानने से न अशुद्धि पैदा होती है और न शुद्धि पैदा होती है। निर्विकल्प अनुभव करने में शुद्धि होती है और पर के आश्रय से विकल्प करने में अशुद्धि होती है। काल मारेगी बात है, गुरुदेव बोलते हैं वे संज्ञान काई, हिंदी में हम लोग बोल देते हैं, समझ में आई कि नहीं? एक ढंग से बोलते, क्योंकि समझाने वाला कोई भी होगा तो वो पूछेगा काय के लिए बैठा है वो
समझाने के
जो प्रतिज्ञा करके बैठा है। मैं उस एकत्र विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा ये विकल्प है यद्यपि, समझ में आएगा नहीं। और विकल्प करना आचार्यों का कार्य नहीं है, आचार्यों का कार्य तो निर्विकल्प स्वभाव में मग्न अंतर निमग्न रहने का है, समझ में आएगा नहीं, ये उनका कार्य है। लेकिन करे क्या, कार्य तो है अंतर निमग्न रहना, कार्य तो निर्विकल्प रहना है, लेकिन विकल्प आए बिना आए बिना रहता नहीं है। इसमें ज्ञानी जानता है कि ये समझाने का जो विकल्प आया है, ये विकल्प केवल हमारे राग के उदय में आया है। काय के उदय में आया है, समझाने का विकल्प राग के उदय में होता है और समझने का भाव भी राग के उदय में होता है। सो दोनों विकल्प राग है। और एक कोई ने अभी प्रश्न कल परसों किया था, मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण बात बता दूं, समय सार की रचना का विकल्प और गोमत सार की रचना का विकल्प और चरणानियों के समुद्राचार्य का रत्नकरण शाकाचार रचना का विकल्प और आदि पुराण की रचना का विकल्प, इन चारों विकल्प एक जाति के हैं, इनमें जाति भेद नहीं है।
बराबर,
क्या कह रहे हैं, इसलिए इस कारण से अमृत कुंड कुंडाचार्य को महान नहीं जान लेना कि उन्होंने समय सार लिखा द्रव्यानियों के, और इस कारण से अन्य अनियोग के रचनाकारों को हीन मत मान लेना, नहीं तो भ्रांति में डूब जाओगे। क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में क्या भेद करना, कि ये स्वभाव जरा अच्छा है और ये कुछ कम है। मैं तो ये पूछता हूँ कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो भाव शुभ है कि अशुद्ध है, शुभ है। वो भाव चेतन रूप है कि जल रूप है। तीसरी बात सुनो जरा, कि जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वे परिणाम तो वास्तव में भाव कर्म है। कौन से परिणाम है, भाव कर्म है। उस तीर्थंकर जो प्रकृति का आश्रय हुआ है वो द्रव कर्म है, और उसका जब उदय आएगा और उदय काल में जो कुछ भी फल दिखाई देगा वो नो कर्म है। और मैं भगवान आत्मा द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहता हूँ, तो मैं तीर्थंकर प्रकृति की महिमा करूं कि गैर की महिमा करूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से सुन लो। हम पर्यायक की महिमा में भी पर्याय की महिमा बिठा के रखते हैं। जब महिमा ही हमको गायक की करनी है तो सर्वोत्कृष्ट को अलग कर दिया, अब और किसकी महिमा बाकी रह गई। तीर्थम करत्व की भी महिमा नहीं रही उस गायक में, तो किसकी महिमा को उस गायक में आप ले जा सकते हो, समाहित करना चाहते हो, कि सब महिमाओं के को गौर करना होगा, गौर करना होगा। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, क्योंकि विकल्प दशाओं में आओगे तो जिन्होंने शुद्धात्मा में जाने की विधि बताई है उनके प्रति विनय का भाव ना आए, हैं उनके प्रति सविकल्प दशा न आए, ऐसा होता
नहीं है,
आता ही है। जिन जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष का मार्ग दिखाया, उन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा हमने रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को जानकर अवेद स्वभाव में स्थिर होकर रत्नत्रय प्रकट किया, अब विकल्प दशा में आएंगे तो हम उन जिनेन्द्र भगवान का विनय नहीं करेंगे,
जरूर करेंगे।
हम आपसे पूछते हैं कि एक भोजन का भाव स्वभाव है क्या स्वभाव है, और तरह तरह के व्यंजन खाने का भाव अशुभ भाव है कि महा अशुभ भाव है, ढंग से समझना जरा क्या ही ख्याल में, वो महा अशुभ भाव है, और ये महा अशुभ भाव आए बिना आए बिना
ठीक है ना,
कितने समझदार लोग हैं अपन। अशुभ भाव तो आए बिना नहीं रहता है, और शुभ भाव को हम आने देते नहीं है। बुद्धिपूर्वक समझदार हो, एक कल्याण के मार्ग में आने लायक तुम्हारी पात्रता है कि डूब जाने लायक तुम्हारी पात्रता है, समझा रहा है नहीं ख्याल में। इसलिए भाई देखो पर्याय से शुरू करते क्या क्या लिया, देखो वही क्या है जो न परमत्त है और न जो अपरमत्त है, वो तो पर्यायार्थक न से शुरू कर दिया। कौन सी दशा तो होती पर्याय, और वो पर्याय किसकी, ज्ञाय के तो पर्याय नहीं होती, लेकिन वो ज्ञाय के समझ लेना आप जरा, कैसे लिखा यहां वह ज्ञाय भाव संसार दशा में, माने ज्ञाय भाव स्वयं में, वो ज्ञाय भाव की जो संसार दशा होती है उस दशा में दूध पानी की तरह कर्म कुंडलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा बदल गया ना, यानी दो स्वभाव होते हैं एक द्रव्य में, पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव, और दोनों स्वभाव की चर्चा करो तो प्रमाण कथन कहलाता है, उसमें एक को गौर करो और एक को मुख करो तो वो द्रव्य का कथन कहलाता है, और उसमें ज्ञायक अभेद ज्ञायक को मुख करके कहो तो वो दृष्टि के विषय वाले नय का कथन कहलाता है। लेकिन हम एक बात और बताएं, दृष्टि के ज्ञाय को बताने वाले दृष्टि के कथन को करना पर्यायार्थिक नहीं है। क्या कह रहे, पर्यायार्थिक का मतलब बोलने का विकल्प आया ना, उसको समझाने या समझने का विकल्प आया ना, तो विकल्प द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है कि पर्यायार्थिक नहीं का विषय है, इसीलिए वो विकल्प बाहर छूट जाता है और अनुभव करने वाले पर्याय स्वभाव में एकाकार होकर स्वभाव का भी विकल्प मिल जाता है, भेद का विकल्प मिल जाता है, और अनुभव करने वाली पर्याय अपने सत्ता को भूल जाती है और अपनी सत्ता में द्रव्य स्वभाव की सत्ता की अनुभूति करती है। किसकी अनुभूति करती है, देखो फिर घोषणा भी करती है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य हूँ, यथार्थ से है अन्न कुछ पर द्रव्य हो परमाणु मात्र। ये कौन घोषणा कर रहा है, ये पर्याय घोषणा कर रही है, काहे की कि मैं कौन हूँ, पर्याय तो पर्याय उनका घोषणा करना चाहती, कह नहीं मेरी घोषणा मेरी तरफ से नहीं, मेरी घोषणा मेरे स्वामी के एकत्व की तरफ से, नहीं किसकी तरफ से है, अपने स्वामी से एकत्व स्थापित किया है और अब मैं घोषणा कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़के और प्रधानमंत्री बन जाए तो उसकी पत्नी क्या बन गई, बोलो ना, और उसमें कुछ रो आएगा कि नहीं आएगा,
जरूर आएगा,
तूने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, तेरे में रो कहाँ से आ गया, कल मेरा जो एकत्व है स्वामी में, मेरा एकत्व होने से स्वामी का समस्त वैभव मेरा ही है, क्या किसी दूसरे का नहीं है, वो वैभव मेरा है, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ, मैं ही अमूर्तिक हूँ, ख्याल मैं कि नहीं, और परद्रव्य का परमाणु मात्र मेरा, अरे परद्रव्य का परमाणु मात्र मेरा तो नहीं है, पर वो पर्याय ये कह रही है कि पर्याय मात्र मेरी नहीं, क्या कह रही है, पर्याय कह रही है, हाँ ये कह रही, तो उसका अहम द्रव्यमय हो गया, किस रूप हो गया, द्रव्यमय हो गया, अब द्रव्यमय इसका अहम हो गया, वो जितनी भाषा बोले वो सब भाषा द्रव्य स्वभाव की चाहिए, उसमें पर्याय और संयोग और भेद और एक अन्य की बात है ही नहीं उसमें, यहां तक कि आज आज जो विधान चल रहा था वो गजब बात आई, उन्होंने ये कहा कि इन पंच परमेष्टि का आश्रय लेके हम स्वरूप में जाएंगे, लेकिन स्वरूप में इनको नहीं ले जाएंगे, उनका आश्रय लेके स्वरूप में गए उनको नहीं ले जाओ, कहां ऐसे ही है, क्योंकि विनय का जितना भी परिणाम है वो दशलक्षण पूजन में लिखा है, शिव वनता की सखी बखानी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की वो सहेली है, वो मोक्ष लक्ष्मी को मोक्ष स्वामी तक ले जा सकती है, उसके संगे नहीं जा सकते, विकल्प शुद्धात्मा का लक्ष्य करा सकते हैं लेकिन शुद्धात्मा तक स्वयं नहीं जा सकते, इसीलिए विकल्प बाहर रह जाते हैं और निर्विकल्प अनुभूति अंदर हुआ करती है। चलो वापस आइए, ये गाथा तो इतनी जबरदस्त है, मुझे बहुत बातें इसमें बतानी, समुद्र लहरा रहा, इतनी बातें हैं इसके अंदर, अगर एक एक की व्याख्या करें तो ये छठवीं गाथा 8 दिन को पर्याप्त थी, है इसमें इतना मन। और आपको सब नया ही नया मिलने वाला था, क्योंकि हम जिंदगी और एक ही तो काम करते रहते हैं। जिनागम में डुबकी लगा के हर अनियोग के आगम में व्यायिक स्वभाव की ही पुष्टि करते हैं। क्या कह रहे, चारों अनियोग में व्यायिक की पुष्टि है, वो तुम्हें ये भी खबर नहीं है अभी। चारों अनियोग में व्यायिक के सिवाय दूसरे राग की पुष्टि कहीं नहीं है, स्वभाव की पुष्टि ये है कि तुम्हारी बुद्धि जब जिन विकल्पों में लग जाए उसमें उनके माध्यम से लगे, लेकिन ज्ञायक की महिमा उसमें आना चाहिए। अगर ज्ञायक की महिमा नहीं आई तो समझ लो आपने कुछ समझा नहीं। अब सुनना, पूजा में भी हम तो ज्ञायक की महिमा से पूजा का आरंभ करते हैं। हरता धर्म प्रकाश हेरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। उसमें लिखा है ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। लो वो ज्ञायक आ गया। और अभी हम ज्ञायक किसको बोल रहे हैं? भगवान को ज्ञायक बोल रहे हैं। अभी जिनेन्द्र भगवान को ज्ञायक बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी परिणति तुम्हारे बिंब को देखकर निज बिंब पर आ जाएगी, निजात्मा पर आ जाएगी, तो तुम ज्ञायक हो विश्व के भूल
जाऊंगा।
स्वभाव मेरा मेरे में ये चलेगा, ख्याल में आएगी, ये आ जाएगी। मैं बताऊं क्या होता है, दर्शन करने की विधि में ज्ञायक की अनुभूति होती है। दासों हम रटता हुआ पहुंचा प्रभु के पास, घर से निकला, हे प्रभु आप मेरे ईश्वर है, स्वामी है, मैं आपका दास हूँ। दासानुदास बोलते कि नहीं, गुरुदेव तो दासानुदास कहते हैं। मैं आपका दास हूँ। दासों हम रटता हुआ पहुंचा प्रभु के पास, दास दर्शत ही मिट गया। सोहम रहा प्रकाश जो उनको देखा, अपने स्वभाव को मिलाया, द्रव गुण पर्याय स्वभाव को और उनके द्रव गुण पर्याय स्वभाव को मिलाया, तो मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी, ऊपरी माने पर्याय का अंतर यही ऊपरी जान, ये विराग, यहाँ राग वितान, ये राग का पर्दा ही मात्र है, वो राग का पर्दा राग है, ज्ञायक नहीं है। क्या कह रहे, इस तरह से हर एक चीज को समझना है सर्वांगीण तरीके से। और ऐसा मत समझना कि तुम जो करते हो वो सम्यक्त का मार्ग है, दूसरा करता सो वो मिथ्यात्व का मार्ग है, एक भ्रांति में भी मत डूब जाना। आगम को देखना तो सब जगह के नेत्र खुल जाएंगे। चलिए वापस, यहाँ कहते हैं द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, ये जिस सेंटेंस को हमने सीधा कर दिया है तो इजी हो गया समझना। देखो उसमें तो ऐसा लिखा है दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश, यानी ऐसी कसाएं जो हो रही ना स्वासोद्भाव, इनका नाश करना कठिन है, इनका अभाव करना कठिन है, इसलिए वो दुरंत कसाय चक्र उदय वैचित्र वशेन, उसकी उदय की विचित्रता के अधीन ये जो स्वभाव भाव होते हैं, ये करते क्या है, पुण्य पाप निवर्तकानम, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। तो हमने इसको सीधा ले लिया, जिससे ज्यादा आपको राउंड, कोई भी चीज राउंड अमाउंट बोली जाती है तो कठिन हो जाती है, और वही चीज डायरेक्ट बोल दी जाती है तो सरल हो जाती है। जो इसमें लिखा है पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, कौन नहीं होता, ज्ञायक भाव नहीं होता, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। जो लिखा ही नहीं भाई है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। इसलिए ज्ञायक प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होने से शुद्ध ही रहता है। अरे शुद्ध ही था, शुद्ध ही है, और शुद्ध ही अनंत काल
नहीं रहे।
तो तुम्हें शुद्ध होना है कि शुद्ध हो, है? मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्त है। भले अमृत चंद्राचार्य ने यह बात कही कही कि मेरी परिणति मोह के अनुभव करके मलिन हुई है और वो कलमाशित हो गई है और उस परिणति में परम विशुद्ध दशा प्रगट है, लेकिन प्रगटेगी कैसे? शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, मैं जो शुद्ध चेतन मूर्ति अनादि अनंत विराजमान हूँ, अगर वो परिणति जो मलिन हो गई है वो पर का संयोग छोड़कर मेरे शुद्ध चेतन स्वभाव का अनुसरण करे और उसका अनुभव करे तो विशुद्ध दशा प्रकट हुए बिना
रहेगी नहीं।
चौथा बिंदु लिया है हमने जयचंद पंडित जी के भावात्म से, ये चौथा बिंदु पढ़ते हैं। गायक नाम उसे गेयों को जानने के कारण दिया गया है, संस्कृत की ठीक में भी ये से लिखा है, गायक नाम उसको गेयों को जानने के कारण दिया गया है, यद्यपि गेयों को गायक जानता है तथापि उसमें गेयकृत अशुद्धि नहीं हो, ये गजब बात है। यानी गेयों को नहीं जानता है तो फिर अशुद्धि के निषेध की कोई जरूरत ही नहीं है, जानता ही नहीं तो काय का निषेध उसमें, या तो कहते जानता है परंतु उसकृत अशुद्धि इसमें तो जानने की तो स्थापना कर दी और अशुद्धि का निषेध कर दिया। पढ़ते हैं देखो, जब आप संस्कृत पढ़ के सुनाते इसकी इसकी वाली संस्कृत में देखो, ये लिखा है, यहां लिखा है
पेज नंबर
कि गे निष्ठत्व गेयों को जानने के कारण ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि किस रूप में है? ज्ञायक के रूप में उसकी प्रसिद्धि है। दाह्य निष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्व न, दाह्य निष्ठ जैसे ईंधन में जो अग्नि में जो ईंधन पड़ा हुआ है वो अग्नि ईंधन बराबर हो जाती है, ईंधनमय हो जाती है, समझे ऐसा ऐसा कहा गया, लेकिन सच्चाई ये है तो ईंधन कभी अग्निमय नहीं होता है, अग्नि ही अग्निमय होती है, ईंधन तो ईंधन रहता है, और मगर वो ईंधन कदाचित अशुद्ध वस्तु का भी क्यों ना हो, लेकिन अग्नि उस अशुद्ध ईंधन की भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती है, शुद्ध ही होती है। तो जैसे ईंधन की अग्नि ईंधन के कारण अशुद्ध नहीं होती है, भले ईंधन आकार को धारण कर लेती है, इसी प्रकार ज्ञायक भले के आकारों को धारण करता हुआ दिखाई देता है पर गेयाकारों की अशुद्धि उस गेयाकार में ज्ञान के गेयाकार में नहीं आती
है।
जब ज्ञान के गेयाकार में अशुद्धि गेयों की नहीं आती है तो इन रूप परिणमने का कारण क्या है? कारण उसका स्वभाव, द्रव्य में परिणम परिणाम तत्व शक्ति होती है, सही आया, उस शक्ति से द्रव्य अपनी पर्याय रूप में परिणमन भी करता है, अपनी पर्याय को परिणमाता भी है और उसमें वो परिणमन की योग्यता होने से उस प्रकार का परिणमन देखा जाता है। तो जय इधर बाहर में निमित्त निमित्त एक संबंध देखने में आता है कि यहाँ पर ज्ञान की पर्याय गेयाकार रूप परिणमी, वही ज्ञान की पर्याय को ये भाषित हो गया कि ये जो आकार है ये मेरा परिणमन है, ये गेय का परिणमन नहीं है, लेकिन ये भी भाषित हो गया कि ऐसा गेय सत्तावान जगत में है। क्या कह रहे? अगर ये न जाने तो वेद ज्ञान नहीं होगा, वेद ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा की अभेद अनुभूति हो ही नहीं सकती सच्ची, और भेद में अगर अटक गया है तो अनुभूति का प्रश्न ही नहीं आता, और भेद को न जाने तो अभेद अनुभूति भेद की ही होती है, जिसने भेद किया है उसको न्यारा किया, उस भेद से दृष्टि हटाई और अपने जहां भेद नहीं है उसमें दृष्टि जमाई तो अभेद अनुभूति प्रकट होती है। यहां तक कि नए के विषय को भी गौर करना पड़ता है, शुद्ध नये के विषय को ऐसा लिखा है, तो शुद्ध नये के विषय में ये लिखा है कि ये मुक्ता नए पक्षपातम, जो पक्षाति क्रांत होता है, ये मुक्ता नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, स्वरूप में जो नित्य निवास करते हैं, गुप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं,
स्वरूप गुप्ता निवशन्ति नित्यम विकल्प जालाश्चुत शांत चित्त, विकल्प के जाल से जो शांत चित्त हो गए हैं, जाल से निकल आए हैं, नए का विकल्प जाल से बाहर आए हैं, सही है। लेकिन ये बाहर उनको आने का प्रश्न है जो उस जाल में गए हो, जो गए ही नहीं वे तो बाहर ही पड़े हुए हैं, उन्हें तो निकलने का प्रश्न ही नहीं, वे तो कोई दूसरे जाल में फंसे हुए। अभी उनके नए के जाल में आने का भी चांस नहीं और निकल के स्वभाव में जाने का भी चांस नहीं।
जी बोल रहे
हैं
विषय जाल में फंसे,
विषय जाल में। अच्छा हाँ, ये भी हमें ख्याल में नहीं आई वो जाल की, विषय जाल में फंसे भैया, विषय जाल से तो निकल नहीं पड़ेगा आयजन में। विषय जाल से निकल कर शुद्धात्मा को समझाने वाला जो आगम है, जिनेन्द्र का दर्शन पूजन भक्ति, उनके स्वरूप का गुणगान, यद्यपि ये भी शुभ विकल्प जाल है तथापि वो अशुभ विकल्प जाल से निकलने का उपाय जे ही है, दूसरा है नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कपड़ा आज पहना, ये कल तक गंदा हो गया, तो इसकी गंदगी निकालने के लिए साबुन लगाना कि नहीं लगाना, बोल जल्दी बोलो, हाँ ऐसे टाइम खराब ना हो, है लगाना, काय के लिए लगाना, लगा के सुखा देना कि लगा के धो देना, तो जब धोना था तो लगा ही क्यों, ये गजब बात है, लगा भी रहे हो और धो भी रहे हो, इसलिए लगाया कि मेल से मेल कटता है, क्या कहा, मेल से मेल कटता है, ऐसी कहावत है भाई, तो वो जो मेल इसमें लग गया है, अगर साबुन वाला मेल लगाओ तो वो ढीला पड़ जाता है, और फिर पानी डाल दो तो दोनों मेल, ऐसा नाटक समयसार में लिखा है, नाटक समयसार का सुना दें आपको, वो जहां ये लिखा है, वो धोवी अंतर आत्मा धोवे, हाँ भेद ज्ञान साबु भया, भेद ज्ञान का तो साबुन लगाओ, यद्यपि भेद ज्ञान का साबुन भी विकल्प वाला है, अशुद्ध भाव वाला है, लेकिन लगाओ, चिंता मत करो, अभी जरा तुम्हारे जो विषय जाल है उसको धोने की सामर्थ्य रखता है, ढीला करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए भेद ज्ञान साबु भया और सम रस निर्मल नीर और धोवी अंतर आत्मा, गजब बात है, अंतर आत्मा ही धोवी होवे तो अपना वस्त्र धुलता है, और हम तो मेला करते हैं और धुलवाते धोबी से है, उल्टा चल रहा है, और ऐसे ही भगवान से भी कहते, भगवान मेरा आत्मा मलिन हो गया है, अब मेरी आत्मा को निर्मल कर दो, धोबी समझ लिया कि तुमने भगवान को, भगवान कहां से करेंगे, मलिन जिसने किया उसको धोना पड़ेगा, तुम्हारी पर्याय को तुमने अपने मोह भाव से मलिन किया है, तो तुम्हारी पर्याय को उसमें भेद ज्ञान का साबुन लगाओ और अपना निर्मल क्षमता जल से उसको धो, तो तुम्हारा जो क्षीर है वो निर्मल हो जाएगा, धोवी अंतर आत्मा धोवे निजगुण, ठीक हो जाएगा। वापिस आओ यहां इस तरह से, यतो ही हाँ, उसके दाह्य निष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्वम न, जय अग्नि के जैसे ईंधन के निमित्त से अग्नि में अशुद्धता नहीं आती, भले कदाचित ईंधन अशुद्ध हो तो भी अशुद्धता नहीं आती, ऐसे ये कोई भी हो वे ज्ञान में झलकने से ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती, ये कह रहे क्या कह रहे, यहां लिखा है देखो, अब आगे आगे अपना बिंदु, ज्ञायक नाम उसे गेयों को जानने के कारण दिया गया है, यद्यपि गेयों को ज्ञायक जानता है तथापि उसमें गेयकृत अशुद्धि नहीं है, जो समय सार की 49वीं गाथा में अलिंग ग्रहण के बोल हैं उसमें पांचवा बोल या छठवां बोल ये आया है कि यद्यपि वो रस को जानता है, लिखा है रूप को जानता है तथापि रूप रूप परिणमित ये लिखा है, क्या कह रहे हैं, ये लिखा है उसके अंदर पांचवें बोल है जहां तक मेरा
ज्ञान होने पर भी रस से तादात्म्य रूप नहीं
पड़ता, उसके तादात्म्य रूप नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि जानता है लेकिन उन रूप नहीं होता है, ऐसे गे ज्ञान में जानने में आए तो आओ, पर ज्ञान कभी गे रूप हो सकता नहीं, ऐसी मर्यादा है, और वे ज्ञान में आओ ये तो कथन है, वे अपने में रहो, ज्ञान ज्ञान में रहे, फिर भी ज्ञान की महिमा ऐसी है उन सबको अपने में झलकाए बिना रहता नहीं। ना झलकाए तो वो ज्ञान, और झलकाता है इसलिए ज्ञान अशुद्ध नहीं हो गया। समझ आया ना? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस जयवंत हो। जिनेन्द्र भगवान, तुम्हारी लीनता तो अंतर में है। वो एक भजन पढ़ते भैया आपके पंच कल्याणक में छिंदवाड़ा वाले, उसमें भी एक ऐसा है, गेयों को पीता गेयों से अछूता। अच्छा, गे को पीता और गे फिर भी गेयों से अछूता रहता है,
सृष्टि को पीता।
हाँ देखो, सृष्टि को पीता, गे तो क्या कहे, पूरी सृष्टि को पी जाता है,
फिर भी अछूता,
फिर भी अछूता।
तू ही तो ऐसा कलाकार है,
तू ही तो ऐसा कलाकार है, गे आकार होकर के भी गे से भिन्न रहता है, ये तेरी कलाकारी, ये ज्ञान की कलाकारी।
पियाने पिलाई गई है, पियाने पिलाई गई, पी नहीं पिलाई गई है।
अब उसका अर्थ भी हम जब कोई पिलाए बताना, हम समझाएंगे, नहीं पिला पाएगा। हाँ ऐसा है। वापस यहाँ कहते हैं, गे कृत उसमें अशुद्धता नहीं होती, अशुद्धता अशुद्ध नय का और शुद्धता शुद्ध नय का विषय, माने अशुद्धता की सत्ता है और शुद्धता की सत्ता है। जिसकी सत्ता है वो नय का विषय, जिसकी सत्ता नहीं है वो नय का विषय है ना, जो नय का विषय नहीं है वो प्रमाण का भी विषय नहीं, ऐसा, क्योंकि उनमें ऐसा नियम है, क्योंकि प्रमाण का विषय होवे उसका अंश नय कहलाता है, ऐसा नियम है। इसलिए शुद्ध नय अपेक्षा अशुद्धता पर्याय दृष्टि है, व्यवहार है, ये है, अभूतार्थ है, अविद्यमान है। अविद्यमान है माने वो स्वभाव में विद्यमान नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता निषेध जिसका करो उसकी सत्ता जान के ही निषेध होता है। जिसकी सत्ता नहीं उसका निषेध क्या, मगर उसकी सत्ता होगी, उसमें होगी, उसकी सत्ता मेरे स्वभाव में, इतनी सी बात। उसकी सत्ता भी हमने स्वीकार कर ली, पर ऐसी स्वीकार की कि तू तू तुझमें है, मैं मुझमें हूं, मैं ही मेरा करता धरता, तू ही तेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा। क्या कह रहे, ये पद जो रचे गए हैं इनमें तत्व का अमृत छलकता है। क्या ख्याल में, ये भूल जाओ किसने लिखा किसने नहीं लिखा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यक्ति को याद करने से राग द्वेष की उत्पत्ति के हजार चांस होते हैं। क्या कह रहे हैं, किस व्यक्ति ने लिखा किसने नहीं लिखा, तुम तो ये देखो क्या लिखा क्या नहीं लिखा, आगम सम्मत लिखा कि नहीं लिखा, ये देखने की बात है। और ये देखोगे तो तुम्हें लाभ होगा। ये एक बात कहूं, हमें इलाज कराना है और जिस हॉस्पिटल में हमको भर्ती किया वहां वो इलाज करने वाला हार्ट स्पेशलिस्ट मुसलमान, कराएं इलाज के नहीं कराएं, बोलो हैं, मुसलमान से। अरे तुझे इलाज से मतलब है कि मुसलमान से मतलब है, जेनी से करा लो, पर जानता नहीं है हार्ट का इलाज, मुमुक्षु से करा लो, पर जानता नहीं है वो कैसे तुम्हारा इलाज करेगा। मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और आपके सामने हर किसी की बात करने की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि आप लोग अभ्यासी बैठे हो, हमारे साथ ही के अभ्यासी, कुछ तो हमारे पहले के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात हमें डर लगता किसी किसी को यहां बैठ के बोलने में, डर इसीलिए लगता है कि बाद में तुमने दोबारा नहीं सुना तो हम निर्विकल्प ही हो जाएंगे, और क्या सुनाने का विकल्प ही नहीं आएगा, तो हम अपने स्वभावस्थ हो जाएंगे। तुम ऐसा करके तो देखो, लेकिन तुम मर जाओगे मुफ्त में अगर नहीं सुनाने दोगे तो, ऐसा है। इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, वो पर्याय दृष्टि है, व्यवहार है, और इसलिए वाकई में वो पर्याय दृष्टि गौड़ है, ये है, स्वरूप के अनुभव में वो मालूम नहीं कहां चली जाती, वो स्वरूप अनुभव में तो नए को न लेश, प्रमाण को न प्रवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस हो ही जाते है, जे जे वस्तु साधक कही ते ही वस्तु बाधक कही, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन अन्य की चर्चा क्या करें। चलिए वापस आ रहे हैं, हमें ध्यान है टाइम का। यद्यपि शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, तथापि अशुद्धता अशुद्ध नय का विषय है और अशुद्ध नय का विषय संसार है। क्योंकि तुम विकारी भावों में रमोगे तो संसार घटेगा कि बढ़ेगा? तो भैया अशुभ भावों में रमोगे तो संसार घटेगा कि बढ़ेगा? तो क्या करें? ऐसा करो, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंग दो करे कर्म बंद, वीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। अच्छा आगे कहते, ऊंच ऊंच दशाधार चित्त प्रमाद को बिगार, चित्त से प्रमाद को टालो तो अशुभ से शुभ में आओ तो कुछ प्रमाद टलता है, और शुभ से शुद्ध में जाओ तो निष्प्रमादी हो जाता है। ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को बिडार, ऊंचली दशाते नित गिरो अधो धरणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति भरणी, भाग चंद या प्रवाह प्रकार, जीव लहे सुख अपार, या को निस्तार श्यादवाद की उचरणी। इस श्यादवाद के कथन में इसका निस्तार होता है, ये अपनाई जाती है शैली, और वो शैली तुम भी अपनाओगे तो तुम साधक अवस्था में जब विकल्प में आओगे तो भी साधक कहलाओगे, क्योंकि लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होगे, क्योंकि मुझे तो स्वरूप में रमण करना ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर भी विकल्प आएंगे तो विकल्पों अनुसार परिणमन भी देखा जाएगा, तथापि वो परिणमन से तुम्हारा भेद ज्ञान वर्तेगा, और भेद ज्ञान वर्तने से और परिणमन में कषाय की मंदता होने के काल में ही शुद्धता वाला परिणाम होता है, तीव्रता के काल में शुद्धता का परिणाम नहीं होता। क्या कह रहे? इसलिए अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार दुख रूप है, अतः दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रमुख है, प्रधान है। शुद्ध नय का उपदेश किस लिए कहा? कि अगर दुख मिटाना हो तो शुद्ध नय का प्रदेश उपदेश प्रमुख है। सातवीं गाथा में शिष्य कहता है कि अगर आत्मा को आप शुद्ध ही शुद्ध सिद्ध कर रहे हो, परमत्त परमत्त कुछ भी उसमें नहीं है, तो फिर उसमें दर्शन ज्ञान चार्थ के भेद तो है, वो भेद के कारण तो उसमें अशुद्धि आएगी कि नहीं? तो अमृत चंद्राचार्य तो टीका में लिखते हैं, प्रथम तावत माने प्रथम तो उस आत्मा में बंद कृत अशुद्धि की तो बात दूर ही रहो, उसमें तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद कृत अशुद्धि भी नहीं है, क्योंकि भेद है ही नहीं। भेद तो समझाने को तुमने किए हैं, वस्तु में भेद है ही नहीं, इसलिए वो दर्शन चारित्र के भेद कृत अशुद्धि नहीं होती। तो वो कहता है पर ऐसा है तो फिर जिनागम में परमार्थ का ही उपदेश दो, व्यवहार का उपदेश क्यों देते? नहीं नहीं नहीं, परमार्थ का उपदेश के लिए व्यवहार का उपदेश जरूरी, व्यवहार ही परमार्थ को समझाता है, लेकिन किन के लिए? जो व्यवहार को परमार्थ ना माने उनके लिए। क्या कहा? व्यवहार को परमार्थ ना माने पर व्यवहार से परमार्थ को समझ ले, उनके लिए उपदेश। इसकी विशेष चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी टाइम।